डैनियल की पुस्तक संख्या 112 इश्माएल का भविष्यवाणी संबंधी प्रतीकवाद का अनावरण धनुर्धर से 1494 के पर तक मोहर लगाने वाले तक।
और परमेश्वर उस बालक के साथ था, और वो बड़ा हुआ और जंगल में रहने लगा और धनुर्धर बन गया। उत्पत्ति 21:20।
इश्माएल एक धनुर्धर बन गया, ये युद्ध का प्रतीक है और रोम के विरुद्ध लाए जाने वाले कार्यकारी न्याय का भी प्रतीक है।
जो लोग बाबुल देश से भागकर बच निकले हैं, उनकी ये पुकार है कि वे सियोन में हमारे परमेश्वर प्रभु का प्रतिशोध, उसके मंदिर का प्रतिशोध घोषित करें। बाबुल के विरुद्ध धनुर्धारियों को एकत्र बुलाओ, हे धनुष खींचने वालों, सब के सब उसके चारों ओर छावनी डालो, उसमें से कोई ना बचकर निकले। उसके काम के अनुसार उसे बदला दो, उसने जो कुछ किया है उसके अनुसार तुम भी उसके साथ करो, क्योंकि उसने प्रभु के विरुद्ध, इसराइल के पवित्र के विरुद्ध घमंड किया है। यिर्मयाह 50:28-29।
धनुर्धर उसके कर्मों के अनुसार बाबुल को प्रतिदान देते हैं, और ये प्रतिदान शीघ्र आने वाले रविवार के कानून के समय प्रकाशित वाक्य के 18वें अध्याय की दूसरी वाणी के साथ आरंभ होता है, जब बाबुल का प्रगतिशील कार्यान्वयनात्मक न्याय प्रारंभ होता है।
और मैंने स्वर्ग से एक और आवाज सुनी जो कहती थी, हे मेरे लोगों, उसमें से बाहर निकल आओ, ताकि तुम उसके पापों में सहभागी न बनो और उसकी विपत्तियों में से कुछ भी न पाओ, क्योंकि उसके पाप स्वर्ग तक पहुंच गए हैं और परमेश्वर ने उसके अधर्मों को स्मरण किया है। जैसा उसने तुम्हारे साथ किया वैसा ही उसे प्रतिफल दो, उसके कामों के अनुसार उसे दुगुना दो। जिस प्याले को उसने भर रखा है उसी में उसे दुगुना भरकर दो। जितना उसने अपने आप को महिमा दी है और ऐशो आराम से जीती रही है, उतना ही उसे यातना और शोक दो, क्योंकि वो अपने मन में कहती है, मैं रानी बनकर बैठी हूं, मैं विधवा नहीं और मुझे कोई शोक न होगा। प्रकाशित वाक्य 18:7।
इश्माएल और उसकी माता हागर को ज्येष्ठ पुत्र के अधिकार का वारिस बनने से रोका गया और उन्हें बाहर निकाल दिया गया। इस प्रकार ईर्ष्या इस्लाम की भविष्यवाणी मूलक प्रेरणा बन गई और युद्ध उनकी भविष्यवाणी मूलक वृत्ति बन गया। पहला उल्लेख सारा द्वारा इश्माएल और उसकी माता पर लगाए गए प्रतिबंध को शामिल करता है, और उनका प्रतिबंध परमेश्वर के वचन और इतिहास भर में इस्लाम का एक प्रमुख भविष्यवाणी मूलक लक्षण बन गया। इश्माएल के वंशज जंगली लोग होने थे, जिनका हाथ हर मनुष्य के विरुद्ध था, और उनके जंगली स्वभाव का प्रतिनिधित्व घोड़ों के कुल के जंगली अरबी गधे द्वारा किया गया है। इस प्रकार पहली और दूसरी विपत्तियों का इस्लामी युद्ध क्रोधित घोड़ों पर सवार योद्धाओं के रूप में दर्शाया गया है। इस्लाम अंतिम वर्षा का संदेश है, और ये उचित ही है कि तीनों हाय तीन विशिष्ट भविष्यवाणी की रेखाओं का प्रतिनिधित्व करते हैं, क्योंकि अंतिम वर्षा की पद्धति पंक्ति पर पंक्ति है। जब पहली दो रेखाओं की भविष्यवाणी संबंधी विशेषताओं को एक साथ लाया जाता है तो वे तीसरे हाय की रेखा स्थापित कर देती हैं। ये तीनों भविष्यवाणी की रेखाएं 144,000 पर मुहर लगने की अवधि को दर्शाती हैं। वे तीनों रेखाएं अंतिम वर्षा के उंडेले जाने की अवधि का प्रतिनिधित्व करती हैं, क्योंकि 11 सितंबर 2001 को तीसरा हाय आने पर अंतिम वर्षा की फुहारें शुरू हुई।
पिछली वर्षा परमेश्वर की प्रजा पर बरसने वाली है। एक सामर्थी स्वर्गदूत को स्वर्ग से उतरना है और सारी पृथ्वी उसकी महिमा से आलोकित हो जाने वाली है। रिव्यू एंड हेरल्ड, April 21, 1891।
मुहरबंदी की अवधि का प्रतिनिधित्व उस काल ने भी किया जो 11 अगस्त 1840 को शुरू हुआ और 22 अक्टूबर 1844 को तीसरे स्वर्गदूत के आगमन के साथ समाप्त हुआ। वह समयावधि हबक्कूक अध्याय 2 में भी दर्शाई गई थी। मिलराइट इतिहास ने हबक्कूक अध्याय 2 की पूर्ति की, और ऐसा करते हुए उसकी शुरुआत 11 अगस्त 1844 स्वर्गदूत के उतरने से हुई और उसका समापन 22 अक्टूबर 1844 को तीसरे स्वर्गदूत के आगमन पर हुआ। हबक्कूक के दूसरे अध्याय में बताया गया है कि दर्शन के अंत में वो दर्शन बोलेगा। प्रकाशित वाक्य के 10वें अध्याय के तीसरे पद में स्वर्गदूत ने ऊंची आवाज में पुकारा, बोला, और 22 अक्टूबर 1844 को उसी स्वर्गदूत ने ये शपथ खाई, कहा कि अब समय न रहेगा। हबक्कूक का प्रहरी दूसरे अध्याय के पहले पद में 11 अगस्त 1840 पर स्थापित है, क्योंकि उसी समय प्रहरी अपनी आवाजें ऊंची करते हैं। 1 मई 1868 के विद्रोह में, जिसे सिस्टर व्हाइट ने प्रकाशित वाक्य अध्याय 18 के उस स्वर्गदूत का प्रतिनिधि बताया जो अपनी महिमा से पृथ्वी को उजियाला करने वाला था, पहरेदारों जोन्स और वैगनर ने अपनी आवाजें तुरही के समान ऊंची की ताकि वे परमेश्वर के लोगों को उनके अपराध दिखाएं, क्योंकि उनका संदेश लाओदीकिया के लिए संदेश था। 11 सितंबर 2001 को, जो एटेसेथरासी के इतिहास द्वारा पूर्व रूपित था, प्रभु ने अपने अंतिम दिनों के लोगों को यिर्मयाह के पुराने पथों पर वापस ले आया, जहां पहरेदारों की बात नहीं सुनी गई। स्वर्गदूत का उतरना पहरेदारों के भविष्य सूचक आगमन को चिह्नित करता है। जो आवाज 11 अगस्त 1840 को पहुंची, वो प्रहरियों के माध्यम से प्रेषित की गई थी, और यिर्मयाह से कहा गया कि यदि वो अपनी निराशा के बाद अपने विश्वास और परमेश्वर पर भरोसे में लौट आए, तो वो परमेश्वर का प्रवक्ता बन जाएगा। जो दर्शन विलंबित था, वो जब अंततः 22 अक्टूबर 1840 को आ पहुंचा, तो उसने बोला। हबक्कूक के दूसरे अध्याय का काल, जो मिलराइट इतिहास में पूरा हुआ 144,000 के मोहरबंद किए जाने की अवधि को दर्शाता है। ये समझना आवश्यक है कि 11 अगस्त 1840 से 22 अक्टूबर 1844 तक की अवधि 144,000 की मोहरबंदी को दर्शाती है, जो वो समय है जब अंतिम वर्षा उंडेली जाती है। ये आवश्यक है कि रेखा पर रेखा की पद्धति द्वारा अंतिम वर्षा के संदेश की पहचान की जाए। वो विशेष काल जो 144,000 की मोहरबंदी है, भविष्य सूचक रेखाओं में बार बार दर्शाया गया है, और ऐसा ही हबक्कूक अध्याय 2 में भी है, जिसे सिस्टर व्हाइट ने सिद्धा बार मिलराइट इतिहास में पूरा हुआ बताया है। वो ये भी बार बार सिखाती है कि मिलराइट इतिहास 144,000 के इतिहास में दोहराया जाता है।
उन भविष्यवाणियों के साथ जिन्हें वे दूसरे आगमन के समय पर लागू मानते थे, ऐसी शिक्षा भी गुंथी हुई थी जो उनकी अनिश्चितता और उत्कंठा की स्थिति के अनुकूल विशेष रूप से ढाली गई थी, और उन्हें इस विश्वास में धैर्यपूर्वक प्रतीक्षा करने के लिए प्रोत्साहित करती थी कि जो बात अभी उनकी समझ के लिए अस्पष्ट थी, वो उचित समय पर स्पष्ट कर दी जाएगी। इन भविष्यवाणियों में से एक हबक्कूक 2:4 की थी, मैं अपनी चौकी पर खड़ा रहूंगा और मीनार पर अपना स्थान लूंगा, और ये देखने के लिए चौकसी करूंगा कि वो मुझसे क्या कहेगा, और जब मुझे ताड़ना दी जाएगी तब मैं क्या उत्तर दूंगा। तब यहोवा ने मुझे उत्तर दिया और कहा, दर्शन लिख और पट्टों पर उसे स्पष्ट लिख दे, ताकि दौड़ते हुए भी पढ़ने वाला उसे पढ़ सके, क्योंकि ये दर्शन अभी भी नियत समय के लिए है, परंतु अंत में ये बोलेगा और झूठ ना बोलेगा। चाहे वो देर करे, उसकी प्रतीक्षा कर, क्योंकि वो निश्चय आएगा, वो देर ना करेगा। देखो, जिसका मन घमंड से फूल गया है, वो उसके भीतर सीधा नहीं है, परंतु धर्मी अपने विश्वास से जीवित रहेगा। 1842 में ही इस भविष्यवाणी में दी गई ये आज्ञा, दर्शन को लिख और उसे पट्टिकाओं पर स्पष्ट कर दे ताकि दौड़ता हुआ भी उसे पढ़ सके, ने चार्ल्स फिच को दानियल और प्रकाशित वाक्य के दर्शनों का निरूपण करने हेतु एक भविष्यवाणी संबंधी चार्ट तैयार करने के लिए प्रेरित किया था। इस चार्ट के प्रकाशन को हबक्कूक द्वारा दी गई आज्ञा की पूर्ति माना गया, परंतु तब किसी ने ये ध्यान नहीं दिया कि उसी भविष्यवाणी में दर्शन की पूर्ति में एक प्रतीत होने वाली देरी, एक ठहराव का समय का भी उल्लेख है। निराशा के बाद ये शास्त्र वचन अत्यंत सार्थक प्रतीत हुआ, दर्शन अभी भी नियत समय के लिए है, परंतु अंत में वो बोलेगा और झूठ न ठहरेगा। यदि वो देर करे तो उसकी बाट जोते रहो, क्योंकि वो अवश्य आएगा, वो विलंब न करेगा। धर्मी जन अपने विश्वास से जीवित रहेगा। यहेजकेल की भविष्यवाणी का एक अंश भी विश्वासियों के लिए शक्ति और सांत्वना का स्रोत था। प्रभु का वचन मेरे पास आया ये कहते हुए, हे मनुष्य संतान, वो कौन सी कहावत है जो तुम्हारे यहाँ इसराइल देश में प्रचलित है कि दिन खिंचते जाते हैं और हर दर्शन निष्फल होता है? इसलिए उनसे कह, प्रभु परमेश्वर यूं कहता है, दिन निकट हैं और हर दर्शन की सिद्धि, मैं बोलूंगा और जो वचन मैं बोलूंगा वो पूरा होगा, अब वो और विलंबित ना होगा। इसराइल के घराने के लोग कहते हैं, जो दर्शन वो देखता है वो बहुत दिनों के बाद का है और वो दूर के समयों के विषय में भविष्यद्वाणी करता है। इसलिए उनसे कह, प्रभु परमेश्वर यूं कहता है, अब से मेरे किसी भी वचन में विलंब न होगा, परंतु जो वचन मैं बोल चुका हूँ वो पूरा होगा। यहेजकेल 12:21-32-27-28। महान संघर्ष 327-393।
मिलरवादियों ने न केवल अपने आप को 10 कुंवारियों के दृष्टांत और हबक्कूक अध्याय 2 की पूर्ति करते हुए देखा, बल्कि वे इस निष्कर्ष पर भी पहुंचे कि जिस इतिहास में वे इन भविष्यवाणियों की पूर्ति कर रहे थे वही इतिहास यहेजकेल द्वारा उसी इतिहास की पहचान भी है जहां हर दर्शन का परिणाम पूरा होना था। इतिहास की वो रेखा जो 144,000 की मुहरबंदी का प्रतिनिधित्व करती है वही वो स्थान है जहां हर दर्शन का परिणाम पूरा होता है। वे रेखाएं जो अंतिम वर्षा और 144,000 की मुहरबंदी के कालों का प्रतिनिधित्व करती हैं इस बात को स्थापित करने के लिए एक साथ लाई जाती हैं कि भविष्यवाणी का इतिहास सदैव अल्फा और ओमेगा की छाप लिए रहता है। मिलेराइट इतिहास प्रकाशित वाक्य अध्याय 10 के स्वर्गदूत की वाणी से आरंभ होता है और उसी वाणी पर समाप्त होता है। 11 सितंबर 2001 प्रकाशित वाक्य अध्याय 18 की पहली वाणी से आरंभ होता है और प्रकाशित वाक्य अध्याय 18 की दूसरी वाणी पर समाप्त होता है। हबक्कूक अध्याय 2 पहरेदारों की वाणी से आरंभ होता है और यिर्मयाह के पहरेदार की वाणी पर समाप्त होता है। पहली हाय मोहम्मद से आरंभ होती है और मोहम्मद द्वितीय पर समाप्त होती है। दूसरी हाय इस्लाम के 4 स्वर्गदूतों के मुक्त किए जाने से आरंभ होती है और इस्लाम पर अंकुश लगाए जाने पर समाप्त होती है। जो पद्धति अंतिम वर्षा है वो यशाया की पंक्ति पर पंक्ति पद्धति है और अंतिम वर्षा के संदेश की पहचान और स्थापना के लिए जो पंक्तियां एक साथ लाई जाती हैं वे सदा ही अल्फा और ओमेगा की छाप लिए रहती हैं। प्रकाशित वाक्य अध्याय 9 का पहला हाय मोहम्मद से आरंभ होता है और मोहम्मद द्वितीय पर समाप्त होता है। ये काल 2 प्रकार के युद्धों में विभाजित है। पहला, रोम पर असंगठित हमले जो अबूबकर के साथ पूरी तरह प्रारंभ हुए और फिर 150 वर्षों की वो अवधि जिसमें इस्लाम का पहला संगठित युद्ध संपन्न हुआ। 150 वर्षों को 5 महीनों की समय भविष्यवाणी द्वारा दर्शाया गया है। दूसरी विपत्ति में भी एक समय भविष्यवाणी है जो 391 वर्ष और 15 दिन की है। इसलिए चूंकि पहली और दूसरी विपत्तियों की भविष्य सूचक संरचना आरंभ के साथ अंत की पहचान कराती है, इसमें मुहरबंदी और एक विशिष्ट समयावधि के बीच एक विभाजन निहित है। मुहरबंदी की प्रक्रिया पहली विपत्ति के इतिहास की जनवात में दर्शाई गई है और इसे दूसरी विपत्ति के अंत में दर्शाया गया है। पहले हाय में पद 4 में वर्णित मुद्रांकन के बाद जो आता है वो 5 महीने 150 वर्ष है। 5 महीने का उल्लेख 2 बार किया गया है, एक बार पद 5 में और फिर पद 10 में। दूसरे हाय में 11 अगस्त 1840 से 22 अक्टूबर 1844 तक की मुद्रांकन प्रक्रिया से पहले जो है वो पद 15 की घंटा दिन महीना और वर्ष 391 वर्ष और 15 दिन की भविष्यवाणी है। एक ही निरंतर क्रम में 5वीं और 6ठी तुरही मुद्रांकन प्रक्रिया के चित्रण के साथ आरंभ होती और उसी के साथ समाप्त होती हैं। 2 रेखाओं के रूप में रेखा पर रेखा लागू करने पर वे एक प्रारंभ और एक अंत की पहचान करते हैं जो मोहम्मद प्रथम और मोहम्मद द्वितीय द्वारा चिह्नित है। रेखा पर रेखा के अनुसार वे प्रत्येक रेखा में 2 भिन्न अवधियों की पहचान करते हैं जो इसलिए उत्पन्न होती हैं क्योंकि प्रत्येक रेखा में समय संबंधी भविष्यवाणी है। पहली विपत्ति के इतिहास में इस्लाम को रोम को चोट पहुंचानी थी और दूसरी विपत्ति में उसे रोम को मारना था। पहली विपत्ति भालों, तलवारों और तीरों का युद्ध थी और दूसरी विपत्ति ने हथियार के रूप में बारूद का परिचय कराया।
पद 10, और उनके पास बिच्छुओं के समान पूंछें थीं और उनकी पूंछों में डंक थे और मनुष्यों को 5 महीनों तक हानि पहुंचाने की शक्ति उनमें थी। 11, और उनके ऊपर एक राजा था जो अथाह कुंड का स्वर्गदूत है जिसका नाम इब्रानी भाषा में अबद्दोन है पर यूनानी भाषा में उसका नाम अपोलियन है। अब तक कीथ ने हमें पहली 5 तुरहियों के बजने के विवरण प्रदान किए हैं, परंतु अब हमें उनसे विदा लेकर यहाँ प्रस्तुत की गई भविष्यवाणी के नए पहलू के अनुप्रयोग की ओर बढ़ना है, अर्थात भविष्य सूचक कालावधियाँ। उनकी शक्ति मनुष्यों को 5 महीने तक हानि पहुंचाने की थी। एक प्रश्न उठता है, वे किन मनुष्यों को 5 महीने तक हानि पहुंचाने वाले थे? निस्संदेह वही जिन्हें बाद में वे मार डालने वाले थे। देखे पद 15। मनुष्यों का तिहाई भाग या रोमी साम्राज्य का तिहाई, अर्थात उसका यूनानी विभाग। 2. उन्हें अपनी यातना देने का कार्य कब शुरू करना था? 11वां पद इस प्रश्न का उत्तर देता है। 1. वर एक राजा था। मोहम्मद की मृत्यु से लेकर 13वीं शताब्दी के अंत के निकट तक मुसलमान कई नेताओं के अधीन विभिन्न गुटों में बैठे हुए थे और उन सब पर लागू होने वाला कोई सामान्य नागरिक शासन नहीं था। 13वीं शताब्दी के अंत के निकट उस्मान ने एक ऐसी सरकार की स्थापना की जो तब से ऑटोमन सरकार या साम्राज्य के नाम से जानी जाती है। ये बढ़ते बढ़ते सभी प्रमुख मुस्लिम कबीलों तक फैल गई और उन्हें एक महान राजतंत्र में समेकित कर दिया। राजा का चरित्र, जो अथाह गर्त का दूत है। दूत का अर्थ एक संदेशवाहक, एक सेवक या मंत्री होता है, अच्छा हो या बुरा, और वो हमेशा कोई आध्यात्मिक अस्तित्व नहीं होता। अथाह गर्त का दूत अर्थात उस धर्म का प्रधान धर्माधिकारी जो उसके खुलने पर वहां से निकला, वो धर्म मोहम्मदी है और सुल्तान उसका प्रधान धर्माधिकारी है। सुल्तान या ग्रैंड सीनियोर, जैसा कि उसे अक्सर कहा जाता है, सर्वोच्च खलीफा या महायाजक भी है, जो अपने व्यक्तित्व में सर्वोच्च आध्यात्मिक गरिमा को सर्वोच्च लौकिक सत्ता के साथ जोड़ता है। वर्ल्ड एज इट इज, प्रुतर 360। उसका नाम इब्रानी में अब्बदोन, विनाशक, यूनानी में अपोलियन अर्थात जो उन्मूलन करता है या नाश करता है। दो भाषाओं में दो भिन्न नाम होने से ये स्पष्ट है कि शक्ति के नाम की अपेक्षा उसके चरित्र को प्रस्तुत करना अभिप्रेत है। यदि ऐसा है तो दोनों भाषाओं में व्यक्त अर्थ के अनुसार वो एक विनाशक है। उस्मानी शासन का चरित्र सदैव ऐसा ही रहा है। लेकिन उस्मान ने यूनानी साम्राज्य पर अपना पहला आक्रमण कब किया? गिबन के अनुसार डिक्लाइन एंड फॉल आदि, उस्मान ने 27 जुलाई 1093 मोमनक को पहली बार निकोमीडिया के क्षेत्र में प्रवेश किया। कुछ लेखकों की गणनाएं इस धारणा पर आधारित रही हैं कि ये अवधि उस्मानी साम्राज्य की स्थापना से शुरू होनी चाहिए, लेकिन ये स्पष्ट रूप से एक त्रुटि है, क्योंकि उनके ऊपर न केवल एक राजा होना था बल्कि उन्हें 5 महीनों तक मनुष्यों को यातना देनी थी। परंतु यातना की अवधि यातना देने वालों के प्रथम आक्रमण से पहले शुरू नहीं हो सकती थी, जो कि जैसा ऊपर कहा गया है 27 जुलाई तरवस 9 था। इस प्रारंभिक बिंदु पर आधारित निम्नलिखित गणना जे लिच द्वारा 1838 में मसीह का दूसरा आगमन आदि शीर्षक वाले ग्रंथ में तैयार कर प्रकाशित की गई थी, और उनकी शक्ति 5 महीनों तक मनुष्यों को हानि पहुंचाने की थी। उनका अधिकार बस यहीं तक विस्तृत था, लगातार लूटपाट द्वारा यातना देना, परंतु राजनीतिक रूप से उनका संहार करना नहीं। 5 महीने एक महीने में 30 दिन मानकर कुल 150 दिन होते हैं, और ये दिन प्रतीकात्मक होने के कारण 150 वर्ष का संकेत करते हैं। 27 जुलाई 1899 से आरंभ करके ये 150 वर्ष 1050 तक पहुँचते हैं। उस समस्त अवधि में तुर्क लगभग निरंतर यूनानी साम्राज्य के साथ युद्धरत रहे, फिर भी उसे विजित न कर सके। उन्होंने यूनानी साम्राज्य के कई प्रांतों पर कब्जा किया और उन्हें अपने अधीन रखा, परंतु फिर भी कॉन्स्टेंटिनोपल में यूनानी स्वतंत्रता बनी रही। पर 1050 तक में, जो इन 150 वर्षों का समापन था, एक परिवर्तन आया जिसका इतिहास अगली तुरही के अंतर्गत मिलेगा। यूरिया स्मिथ, दानियल और प्रकाशित वाक्य, 522-500 साउथ।
यूरिया स्मिथ जोसाया लिच की 150 वर्षों की गणना का हवाला देते हैं, जो पूरा होने पर अगली तुरही में 391 वर्ष और 15 दिन की भविष्यवाणी के लिए आरंभ बिंदु स्थापित करती है। इन दो परस्पर संबंधित समय भविष्यवाणियों के संबंध में लिच की भविष्यवाणी पर टिप्पणी करते हुए सिस्टर व्हाइट ने लिखा,
सन 1840 में भविष्यवाणी की एक और उल्लेखनीय पूर्ति ने व्यापक रुचि उत्पन्न की। उससे 2 वर्ष पूर्व दूसरे आगमन का प्रचार करने वाले प्रमुख सेवकों में से एक जोशिया लिच ने प्रकाशित वाक्यक 9 की एक व्याख्या प्रकाशित की, जिसमें उस्मानी साम्राज्य के पतन की भविष्यवाणी की गई थी। उसकी गणनाओं के अनुसार ये शक्ति 11 अगस्त 1840 को परास्त होने वाली थी, जब ये अपेक्षा की जा सकती है कि कॉन्स्टेंटिनोपल में उस्मानी शक्ति टूट जाएगी, और मेरा विश्वास है कि यही बात सत्य पाई जाएगी। ठीक उसी समय जो निर्दिष्ट किया गया था, तुर्की ने अपने राजदूतों के माध्यम से यूरोप की मित्र शक्तियों का संरक्षण स्वीकार कर लिया और इस प्रकार अपने को मसीही राष्ट्रों के नियंत्रण के अधीन कर दिया। इस घटना ने भविष्यवाणी को ठीक ठीक पूरा कर दिया। जब ये जात हुआ, तब बहुत से लोग मिलर और उसके सहयोगियों द्वारा अपनाए गए भविष्यवाणी की व्याख्या के सिद्धांतों की सत्यता के विषय में आश्वस्त हो गए और आगमन आंदोलन को एक अद्भुत प्रेरणा मिली। विद्वान और प्रतिष्ठित पुरुष मिलर के साथ जुड़ गए, उसकी मान्यताओं के प्रचार और प्रकाशन दोनों में, और 1640 से 1644 तक ये कार्य तीव्र गति से फैलता गया। द ग्रेट कॉन्ट्रोवर्सी, 3 त्रेत 2 त्रेत 3 तें।
पहली और दूसरी विपत्ति 2 परस्पर संबंधित समय भविष्यवाणियों से जुड़ी हुई हैं। पहली विपत्ति मुहर लगाए जाने के एक चित्रण से आरंभ होती है और दूसरी विपत्ति 11 अगस्त 1840 से लेकर 22 अक्टूबर 1844 को 7वीं तुरही के बजने तक के इतिहास पर समाप्त होती है, जो स्वयं भी मुहर लगाए जाने का एक चित्रण है। आरंभ और अंत अल्फा और ओमेगा की छाप लिए हुए है, क्योंकि जैसे उस इतिहास में जिसमें मसीह ने एक सप्ताह के लिए वाचा की पुष्टि की, ये अवधि 2 भागों में विभाजित है। पहली अवधि पहले मोहम्मद से शुरू होती है और दूसरे मोहम्मद पर समाप्त होती है। दूसरी अवधि परमेश्वर के सम्मुख स्थित सोने की वेदी के 4 सींगों से आने वाली आवाज से शुरू होती है और ये मसीह की आवाज पर समाप्त होती है, जो शपथ खाता है उसकी, जो युगानुयुग जीवित है, जिसने आकाश और जो कुछ उसमें है, और पृथ्वी और जो कुछ उस पर है, तथा समुद्र और जो कुछ उसमें है, सब की सृष्टि की, कि अग समय न रहेगा। हम इस अध्ययन को अगले लेख में जारी रखेंगे।
परमेश्वर की प्रजा अतीत की यात्राओं के महान इतिहास के संबंध में संदेह पैदा करने के लिए शैतान मन में जो भी प्रश्न जगा सके, वो उसकी शैतानी महिमा को प्रसन्न करेगा और परमेश्वर के प्रति एक अपमान है। प्रभु का हमारे संसार में शक्ति और महान महिमा सहित शीघ्र आगमन होने का समाचार सत्य है, और 1840 में इसकी घोषणा में अनेक स्वर उठे। मैन्युस्क्रिप्ट रिलीजेज, खंड 9, 143।